यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक्षि श्रीमदिस डिवाइन ग्रेस श्रील भय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन विविध संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक्षि श्रीमदिस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री श्री कृष्ण बलराम जी की ताई गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jai Balram Jayanti Mahamahotsav ki, Krishna Balram ki. Ekai swarupa hoye bhinna matra kaye, adya kaya vyuha Krishna lilara sahaye. Balram ji, जो कि कृष्ण भगवान के अग्रज के रूप में प्रकट हुए, उनके तत्व के विषय में चैतन्य चरितामृत में सबसे विस्तृत वर्णन दिया गया है। कृष्ण और बलराम दोनों की तुलना करते हुए कहते हैं कविराज गोस्वामी, एक ही स्वरूप, दोनों का स्वरूप एक है, दोनों की शक्तियां विभूतियां सब समान हैं, भिन्न मात्र काय, केवल उनका शरीर और देह एक दूसरे वर्ण का है, रंग का है। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रस है, जो संपूर्ण सृष्टि की रचना में वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध जो चतुर्व्यूह है उसके वो मूल संकर्षण है आद्य काय व्यूह। और बलराम जी का मूल अस्तित्व केवल कृष्ण की लीलाओं में सहायक बनने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण लीला स्वरूप हैं और उनकी लीलाओं में पूर्ण समर्थन करने सहयोग देने बलराम जी हर क्षण प्रस्तुत होते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरि करे कृष्ण रसेबन। बलराम जी मूल संकर्षण के रूप में पांच स्वरूप में प्रकट होते हैं। पहला महासंकर्षण, दूसरा कारणोदक्षाय विष्णु, तीसरे गर्भोदक्षाय विष्णु, चौथे क्षीरोदक्षाय विष्णु और फिर पांच शेष या अनंत शेष। तो ये पांच स्वरूप बलराम जी के विस्तारित स्वरूप हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये पांच स्वरूप में चार स्वरूप जो कि पहले चार महासंकर्षण कारणोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु भगवान श्री कृष्ण के इस जगत की सृष्टि लीला में सहायक बनते हैं। भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण की सहायता वो इन स्वरूपों के माध्यम से करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के नित्य लीला में अनंत शेष के स्वरूप में वो सहायक बनते हैं। शेष का अर्थ क्या है? जो भगवान के अनंत स्वरूपों के अनंत प्रकार की लीलाओं में अनंत वैविधता के साथ जिनकी सेवा करे वो है अनंत शेष। तो कहते हैं अपने करे न कृष्णा लीला रसहाय सृष्टि लीला कार्य करे धोरी चारिकाय। तो सृष्टि लीला में सहायक बनते हुए ये चार स्वरूपों में वो प्रकट होते हैं, लेकिन आपने कोरे न कृष्ण लीला रसहाय, जो बलराम जी स्वयं साक्षात चिदघन आनंदघन ज्ञानघन स्वरूप में प्रकट होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के नित्य शाश्वत लीलाओं की सहायता करने के लिए वो प्रकट होते हैं। आपने कोरे न कृष्ण लीला रसहाय, और इसलिए इनको कहा गया है शेष स्वरूप। शेष अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं जो वो नहीं कर सकते। उनकी सेवाओं को संपन्न करने के पश्चात श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए और कुछ शेष नहीं बचता, इसलिए उनके अंदर असीमित मात्रा में श्री कृष्ण की सेवा करने और उनको संतुष्ट करने का सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है, इसलिए वो है बलराम। लेकिन कई बार सेवा करते हुए मन में अभिमान उत्पन्न होता है, किसी व्यक्ति को लगे कि हम विशेष हैं, यह सामर्थ्य केवल हमारे अंदर है, अन्य किसी के अंदर नहीं। लेकिन अनंत कोटि शक्तियों और सामर्थ्यों से अभिभूत बलराम जी के अंदर रंच मात्र अभिमान प्रकट नहीं होता। श्री कृष्ण की असीमित मात्रा में असीमित शक्तियों के साथ सेवा करते हुए भी वो असीमित मात्रा में विनम्रता प्रकट करते हैं, ये उनकी विशेषता है। सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद सै बलराम गौर संगे नित्यानंद। श्री कृष्ण को हर प्रकार से सेवा के माध्यम से आनंद देते हुए वही बलराम जी जब कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, वही बलराम जी नित्यानंद स्वरूप में प्रकट होते हैं, और नित्यानंद के रूप में प्रकट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार अपने विनम्रता का प्रखर स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इसलिए बलराम जी चार प्रकार के तत्व प्रस्तुत करते हैं। पहला, संपूर्ण शुद्ध सत्व जिसके आधार पर संपूर्ण आध्यात्मिक जगत तैयार हुआ है, वो सारी दिव्य शक्तियां समुचित बलराम जी प्रकट करते हैं, शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। दूसरे, श्री कृष्ण भगवान षडैश्वर्यशाली है, हर प्रकार की शक्ति, यश, सौंदर्य इत्यादि भगवान श्री कृष्ण प्रकट करते हैं, ये सारे षड ऐश्वर्य बलराम जी प्रकट करते हैं। तीसरे, पूरे ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव हैं, बलराम जी ये अनंत कोटि जीवों के उद्गम और स्रोत हैं। और चौथे, जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत का निर्माण करना चाहते हैं तो इस संपूर्ण भौतिक जगत का निर्माण बलराम जी अपनी शक्तियों से समस्त संसार का प्राकट्य करते हैं। इस प्रकार बलराम जी हर दृष्टिकोण से हर क्षण भगवान श्री कृष्ण की नित्य शाश्वत लीलाओं में सहायक के रूप में लगे रहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बलराम जी का नाम देते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉडहेड। जो पूरे ब्रह्मांड के जितने सेवक हैं वो सारे सेवक बलराम जी प्रधान सेवक के रूप में उनके सेना सेवा नायक है, सभी सेवकों के नायक बलराम जी और उनसे बाकी अन्य सारे सेवक प्रकट होते हैं। इसलिए कहा गया है एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जाई छे ना चाहे ते तय छे कोरे नृत्य। तो भले भगवान श्री कृष्ण के अनंत कोटि सेवक हों और भगवान श्री कृष्ण के कई विस्तारित स्वरूप हों, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में विभिन्न अवतारों के माध्यम से लीला क्रीड़ा करके बद्ध जीवों के चित्त को हरने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण चाहे इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में कितने ही स्वरूपों में प्रकट क्यों न हो, एकले ईश्वर कृष्ण, एकमात्र ईश्वर कृष्ण है। और अन्य चाहे कितना भी शक्तिशाली तत्व क्यों न हो, वो भगवान श्री कृष्ण के भृत्य ही हैं। आर सब भृत्य। तो इसलिए बलराम जी श्री कृष्ण के सर्वोत्तम और सर्वप्रथम विस्तारित स्वरूप हैं, लेकिन हर प्रकार की समुचित शक्तियों से ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो केवल उनके भृत्य मात्र हैं। प्रभुपाद जी कुंभ मेला में अपने भक्तों के साथ थे, तमाल कृष्ण महाराज भागे भागे प्रभुपाद जी के पास आए, बड़े विचलित लग रहे थे। प्रभुपाद बोले क्या बात है? तमाल कृष्ण महाराज ने कहा श्रील प्रभुपाद, कुंभ मेला के इस्कॉन के कैंप में दो भक्तों के बीच कृष्ण और बलराम के तत्व को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया है। विवाद होते होते मतभेद हुआ और फिर बहुत गर्मा गर्मी हो गई, आपको हस्ताक्षेप करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा विवाद का विषय क्या है? तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि मधुदिश स्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण और बलराम के बीच में अंतर यह है कि कृष्ण गोरे हैं, बलराम जी गोरे हैं और कृष्ण काले हैं, दोनों में वर्ण का भेद है। कृष्ण काले हैं, बलराम जी गोरे हैं। प्रभुपाद ने कहा ही इज राइट, वो सही बोल रहे हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते लेकिन यमुना देवी कहती है कि कृष्ण और बलराम में अंतर यह है कि केवल कृष्ण राधा रानी के साथ लीला करते हैं, बलराम नहीं। प्रभुपाद ने कहा शी इज राइट, वो भी सही है। तो तमाल कृष्ण महाराज बौखला गए, बोले प्रभुपाद जी दोनों मधुद्विष स्वामी और यमुना देवी दो अलग अलग बातें कह रहे हैं, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा यू आर राइट, आप सही हो। तो तमाल कृष्ण महाराज बोले प्रभुपाद लेकिन सही उत्तर क्या है? प्रभुपाद ने कहा तुम डिसाइड करो। प्रभुपाद बोलते हैं लोग मुझे प्रभुपाद नाम से पुकारते हैं, बट दे ट्रीट मी लाइक प्रॉब्लम पाद, हर प्रॉब्लम को मेरे पास लेके आ जाते हैं। तो इसलिए जब हम भगवान और भगवान के लीलाओं का श्रवण करते हैं तो उन लीलाओं को श्रवण करने से पहले उनके तत्व को समझना आवश्यक है। इसलिए यहां पर बलराम जी सर्वशक्तिशाली सेवक, लेकिन श्री कृष्ण के समक्ष गए विनम्र होकर, अपने अंदर कोई भी अभिमान नहीं। श्री कृष्ण जो सेवा में उनको नियोजित करने के लिए कहे उस सेवा में लगने के लिए बलराम जी निरंतर तत्पर रहते हैं। शांत रस में भगवान श्री कृष्ण के पादुका आभूषण इत्यादि, दास्य रस में उनके सेवक, सख्य रस में उनके साथ लीला क्रीड़ा करते हुए अन्य ग्वाल बाल मित्रों के साथ ब्रज में नित्य नर्मण करते हैं, वात्सल्य रस में निरंतर भगवान श्री कृष्ण को संरक्षण करने का प्रयत्न करते हैं कि कृष्ण किसी भी परिस्थिति में दुविधा में न पड़े, श्री कृष्ण के ऊपर किसी प्रकार से आंच न आए, वो उनके प्रधान सुरक्षक बन के चलते हैं। और फिर माधुर्य रस में, वात्सल्य रस में संरक्षण करने के बाद माधुर्य रस में अनंग मंजरी के रूप में जो कि राधा रानी के बहन है, वो गोपी स्वरूप में श्री कृष्ण का हर प्रकार से सेवा करते हैं। लेकिन इन सभी समस्त सेवाओं में लगे हुए भी बलराम जी की प्रधान बात क्या? नम्र होकर सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी एक टूर पर जा रहे थे, किचन में प्रवेश किए, कुकिंग चल रहा था, माता जी कुकिंग कर रही थी। प्रभुपाद जी माता जी के बगल में आए और जो समोसा वो बना रही थी, कुछ कई दो चार लोग और थे, और प्रभुपाद जी के लिए जो पैकेट बन रहा था यात्रा के लिए, उस बक्से में से प्रभुपाद जी ने एक समोसा खाया। प्रभुपाद जी को अच्छा लगा, एक और खाए, फिर अच्छा लगा, एक और खाए। वो माता जी बोली, प्रभुपाद जी ये तो आपकी यात्रा के लिए हम पैक कर रहे थे, आप सब कुछ अभी खा जाओगे तो यात्रा के लिए क्या बचेगा। तो फिर वो माता जी को ये लगने लगा कि शायद मेरा कुकिंग प्रभुपाद को इतना पसंद आया कि वो सब कुछ यहीं पर खा रहे हैं। तो माता जी से रहा नहीं गया, देखा कि बहुत सारे दूसरे डिवोटीज भी आसपास हैं, तो उनको लगा कि सबके सामने मैं एक प्रश्न पूछती हूं जिससे कि भक्तों के मार्केट में अपना भी भाव बढ़ेगा। तो प्रभुपाद को कहते हैं, माता जी प्रभुपाद आपका सबसे फेवरेट, सबसे पसंद वाला कुक कौन है, किसकी कुकिंग आप सबसे पसंद करते हो? और उनको लगा प्रभुपाद बोलेंगे आप। प्रभुपाद ने कहा, सबसे फेवरेट कुक पता है कौन है? मैं खुद। वो बड़ी नम्र हो गई। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि कृष्ण को हमारी कलाओं की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण को हमारी शक्तियों की आवश्यकता नहीं, निपुणता की आवश्यकता नहीं। भले हमारी कितनी कुशाग्र बुद्धि क्यों न हो, श्री कृष्ण को हमारी वाक पटुता की आवश्यकता नहीं, कृष्ण को हमारे धन की आवश्यकता नहीं, शक्ति सत्ता की आवश्यकता नहीं, कृष्ण भावग्राही है। कृष्ण को केवल हमारे विनम्रतावश सेवा भाव की आवश्यकता है, और इस सेवा भाव को उत्पन्न करने के लिए हम वैष्णव सत्संग में आते हैं, और वैष्णव सत्संग में वैष्णवों की सेवा करके हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं कि सेवा किस भाव से की जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी भक्तों के ऊपर आश्रित होकर, अवलंबित होकर सेवा करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है, इसको वर्णन करते हैं। एकाकी आमार नाही पाई बल, हरि नाम संकीर्तने। महाप्रभु कहते हैं, भाई मेरे अंदर शक्ति नहीं, मेरे अंदर शक्ति नहीं भजन करने की, मैं अकेला ये भजन में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। मुझे अगर भजन में सिद्धि प्राप्त करनी हो तो वैष्णवों के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा। तुम्हें कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। और तब जब वैष्णवगण अपनी कृपा करेंगे तब हम ये भजन कर पाएंगे। इसलिए ये जो कृष्ण की सेवा का प्रशिक्षण हम ले रहे हैं, ये बलराम जी जब इस जगत के किसी जीवित व्यक्ति के हृदय में अपनी संबित शक्ति को विस्तारित करते हैं, वो संबित शक्ति जिस शक्ति के माध्यम से कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कौन सी सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रक्रिया है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है, वो है संबित शक्ति। तो बलराम जी उस संबित शक्ति के असीमित खजाने से दो बिंदु जब इस जगत के किसी जीव के हृदय में प्रस्तुत करते हैं और वो सम्मित शक्ति की बूंदे उस वैष्णव के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर बूंद बूंद कर छलकने लगती है। तब जाकर श्री कृष्ण की सेवा किस तरह करें जिससे वो संतुष्ट हो, इस बात की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। इसलिए बलराम पूर्णिमा बड़ा ही महत्वपूर्ण उत्सव है, क्योंकि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली, चाहे कितने ही पूर्व कर्मों का संचय लेकर हम इस जगत में घूम रहे हो, लेकिन कृष्ण को संतुष्ट करने की प्रक्रिया अभिमान युक्त और ईश्वरी भाव के साथ हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपने समस्त कलाओं को तिलांजलि देकर बलराम जी के सामने याचक के रूप में आकर, भिक्षुक के रूप में आकर याचना करनी होगी, करबद्ध निवेदन करना होगा कि प्रभो कृष्ण को सेवा करने की शक्ति और सामर्थ्य हमें आप दीजिए। और वो सामर्थ्य केवल हम वैष्णव सत्संग की कृपा से हम प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग छाड़ी कोइनो असते बिलास, ते कारणे लागिलो ये कर्म बंद फास। और अभिमान युक्त भाव से अगर हम सत्संग को त्याग दिए, छोड़ दिए, तब असत में, इंद्रिय विषय भोग में, भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारा मन आविष्ट होने लगेगा, और तब हम इस भौतिक विषयों के जंजाल में धंसते चले जाएंगे, भौतिक इंद्र तृप्ति के दलदल में फंसते चले जाएंगे। ते कारणे लागिलो ये कर्म बंद फास। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, अगर आपको श्री कृष्ण की सेवा करने का प्रशिक्षण प्राप्त करना हो तो वैष्णव सत्संग में ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य कुछ एनवलप पे स्टैंप लगा रहे थे। स्टैंप लगाने के लिए वो अपनी जिह्वा को उसे चाट रहे थे और अपने थूक से उसको गीला करके स्टैंप लगा रहे थे। प्रभुपाद देख के बोलते, अरे क्या है, कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी इतने गंदे तरीके से आप स्टैंप को गीला कर रहे हो, ये कोई तरीका है क्या, ये मुची है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे करें, तो प्रभुपाद ने कहा कटोरी में कुछ जल लो और जल के अंदर थोड़ा थोड़ा वो बूंद जो है स्टैंप को लगाओ, ये शिष्ट तरीका है, ये नहीं कि थूक लगा रहे हैं, ये कोई तरीका है क्या। तो प्रभुपाद के आदेश के अनुसार उन्होंने अपना एक छोटा सा एक कटोरी में जल लिया और जल को स्टैंप को लगा लगा कर एनवलप पे लगा रहे थे। काफी देर तक ये प्रक्रिया चली, अधिकांश सारे स्टैंप लग गए, लास्ट में एक स्टैंप बच गया लेकिन कटोरे के अंदर जल खत्म हो गया। अब ये सोचते हैं कि अब उठ के जाओ, फिर कटोरे में जल भर के लाओ, कौन करेगा। आसपास देखा कि कोई नहीं है, सब दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद है, देखने वाला कोई नहीं। सोचा पुराना आइडिया पहले ही अपना जिंदाबाद है। दाया बाया देखा कोई नहीं, तुरंत जिह्वा को बाहर किया, स्टैंप को लगाया, जैसे ही स्टैंप जिह्वा को चिपका, दरवाजा खुला, प्रभुपाद खड़े थे। अब प्रभुपाद बोलते, मैंने कहा था तुमको ऐसा मत करो, फिर भी क्यों किया। तो उसने कहा, मुझे क्या पता था आप यहां पर अचानक यहां प्रकट हो जाओगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सेवा इस तरह करो कि आपको परमात्मा नित्य देख रहे हो, आपकी सेवाओं के दर्शन कर रहे हो। उस भाव से जब आप सेवा करोगे तो उस सेवा के अंदर शक्ति उत्पन्न होती है। तो अब वर्णन करते हैं कि बलराम जी कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता हुए। तो प्रश्न उठता है कि बड़े भाई क्यों बने, क्योंकि पिछले युग में रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण बन के बहुत पछताया। रामचंद्र हर सेवा लक्ष्मण को दे देते थे और विशेष रूप से बहुत जटिल और बड़ा विरोधाभास वाला सेवा वो लक्ष्मण के नाम पे आ जाता था। एक तो वनवास में घूम रहे हैं, वनवास में भटकते भटकते सीता और राम के साथ चलते चलते सीता देवी को वन के अंदर कई बातें बड़ी आकर्षक लग जाती थी। कहीं कोई मणि दिख गई तो सीता बोलती थी इसको उठाओ, तो लक्ष्मण उसको उठाते थे। फिर सीता देवी को कोई लकड़े का टुकड़ा अच्छा लगता था जो अलग अलग शेप में था, कहती थी इसको उठा लो, तो सीता देवी के संकेत के अनुसार लक्ष्मण तो पूरा फर्नीचर का दुकान लेके चल रहे थे। और इतनी सेवा करने के बाद भी सीता देवी ने उनको बुरा भला दुत्कार दिया, बुरा भला कह दिया। अग्नि परीक्षा में रामचंद्र जी ने उनको लगाया और फिर सीता को वाल्मीकि के आश्रम के छोड़ने के लिए भी उनको लगा दिया। तो लक्ष्मण ने संकल्प किया कि भाई अगली बार जब प्रकट होंगे तो अनुज बन के नहीं अग्रज बन के, जिससे कि भले मैं सेवा करूं लेकिन फिर भी चॉइस तो रहेगा। छोटे भाई के रूप में तो कुछ चॉइस ही नहीं अपने पास, तो इसलिए वो बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए। और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि रामचंद्र नारायण के स्वरूप, लक्ष्मण शेष, बलराम जी चक्र और शत्रुघ्न शंख के स्वरूप हैं। विष्णु धर्मोत्तर में वर्णन आता है रामचंद्र जी वसुदेव, लक्ष्मण रामचंद्र जी वासुदेव, लक्ष्मण संकर्षण, भरत प्रद्युम्न और शत्रुघ्न अनिरुद्ध के स्वरूप हैं। तो इस प्रकार बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं। और जन्म कब होता है? जब देवकी के गर्भ में 6 संतान प्रकट होने के पश्चात कंस उनका वध करते हैं, 6 पुत्रों के निर्मम रूप से अपने नेत्रों के समक्ष हत्या देखने के बाद भी वसुदेव जी निरंतर आशावादी बने रहे, इसलिए भागवत उनके इस आशावादी भाव की स्तुति करते हुए कहता है ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय च सूतिका गृहात। वसुदेव जी आशावादी हैं इसलिए शौरी कहा गया है, जिन्होंने शौर्य प्रदर्शन किया। क्या शौर्य प्रदर्शन किया? वसुदेव जी भले कई आक्रमणों में पराजित हुए होंगे, उनके स्वतंत्रता का नाश हुआ होगा, वसुदेव जी के संपत्ति का नाश हुआ, वसुदेव जी के संबंधों का नाश हुआ, वसुदेव जी के धन का नाश हुआ, लेकिन वसुदेव जी की आशा का नाश नहीं हुआ। और इसलिए ऐसे आशावादी वसुदेव जी के भाव के प्रति आकर्षित होकर श्री कृष्ण अपने प्राकट्य की तैयारी करते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी को पहले भेजते हैं। तो बलराम जी देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं। इस जगत में देखा गया है कि एक माता के 2 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन एक पुत्र के 2 माता किसी ने देखा नहीं। बलराम जी 1 एंड ओनली हैं। तो तो योग माया के माध्यम से बलराम जी को देवकी के गर्भ से लेकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, और तब रोहिणी के पुत्र के रूप में बलराम जी प्रकट होते हैं। तत् सन्निकृष्ण रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। तो यहां पर बलराम जी के तीन नाम दिए जाते हैं। क्या नाम दिए गए? सबसे पहले बलराम जी गर्भ संकर्षणम तमवै। तो बलराम जी का नाम यहां पर जब गर्गाचार्य आते हैं तो गर्गाचार्य को नामकरण के लिए बुलाया जाता है। नामकरण के लिए जब बुलाते हैं तो गर्गाचार्य कृष्ण और बलराम दोनों को देखकर सबसे पहले नंद महाराज को चेतावनी देते हैं, यदुना महामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतम मया संस्कृतस्ते तम मन्ये देवकी सुतम। कहते हैं कि जगत में मैं यादवों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं। जब जनता में यह समाचार फैलेगा कि यादवों के आचार्य यहां आए थे, प्रश्न उठेगा, यादवों के आचार्य गोकुल जैसे छोटे से गांव में क्यों आए थे? शंका उत्पन्न होगी। कंस के पास ये समाचार जाएगा, कंस को लगेगा शायद मेरा मरण करने वाला हत्यारा वहीं प्रकट हुआ है, और फिर कंस अपने आदमी भेजेगा। इसलिए नंद महाराज, अपने दो पुत्रों की सुरक्षा का अगर ध्यान हो तो मुझसे अपने पुत्रों का नामकरण मत करवाइए, गर्गाचार्य कहते हैं। लेकिन नंद महाराज भी पूरी तरह अपने हट पर, निर्बंध पर लगे हुए हैं, कहते नहीं, अलक्षितोस्मिन रहसि मामकैरपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारन स्वस्ति वचन पूर्वकम। हे गर्गाचार्य, अगर कोई संत अपने घर में आए और उनका आशीर्वाद हमने प्राप्त नहीं किया तो वो सत्संग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। आप हमारे घर पर आए हो तो ये स्वस्ति वाचन करके, नामकरण करके ही आप जाओगे। कहां करोगे? गौशाला में हम जाएंगे, क्योंकि गौशाला में केवल गायें भी नहीं है, खाली है, और वहां पर आप ये नामकरण करोगे। और ऐसा करके वो जाते हैं, लेके चलते हैं, और जब लेके जाते हैं तो गर्गाचार्य बलराम जी के तीन नाम देते हैं। पहला नाम देते हैं कौन? राम। राम अर्थात जो अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम और मैत्री के संबंधों के माध्यम से आनंदित करे। तो इसलिए किसी को संतुष्ट करना हो तो उसके दो तरीके हैं, उसे ससम्मान सेवा करो। जब किसी व्यक्ति को सम्मान और प्रेममय सेवा प्राप्त होती है तब वो व्यक्ति संतुष्ट होता है। तो इसलिए राम नाम दिया गया। दूसरा बल। बल अर्थात जिसके अंदर बड़ी तीव्र मात्रा में शक्ति हो, सामर्थ्य हो। और तीसरा संकर्षण, वो जो दो परिवारों को जोड़े। इस प्रकार ये तीन नाम दिए गए बलराम जी के लिए। और इसलिए मनोग्राह्यस्य वस्तुनो व्यावहार्थम केनापि संकेतित शब्द इति नाम। श्रीधर स्वामी नाम की परिभाषा करते हैं। नाम की परिभाषा क्या है? मनोग्राह्यस्य वस्तुनो, कोई मन और इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य वस्तु, उसको संकेत करने के लिए कोई शब्द दिया जाए, उस शब्द को कहते हैं नाम। तो इस भौतिक जगत में विभिन्न वस्तुओं को हमने शब्द से संकेतित किया है, उसे नाम कहते हैं। लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं, वो अपने नित्य शाश्वत नामों के साथ प्रकट होते हैं। इसलिए यहां पर बलराम जी सनातन काल से वो यही नाम लेके चले हैं, बलराम, और इसके ऊपर कोई उपयोग करने की आवश्यकता नहीं, प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार से एक्सपेरिमेंटेशन की आवश्यकता नहीं, ये इनके नित्य शाश्वत नाम हैं। और इसलिए समय के साथ इस जगत में हर वस्तु परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान के नाम परिवर्तनशील नहीं, वो नित्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इसे सबसे वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा गया है। बहुत साल पहले हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में गए थे कलकत्ता में, सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन, विज्ञान और धर्म कैसे एक साथ जुड़ सके, और उसमें हर वैज्ञानिक हर प्रकार से क्या क्या जटिल भाषा में प्रस्तुत कर रहा था कि कैसे हम विज्ञान के माध्यम से भगवान को समझ सकते हैं। और उस कॉन्फ्रेंस में सबसे आकर्षक बात भक्तों के लिए क्या थी? प्रसाद, जबरदस्त प्रसाद उसमें था वैज्ञानिकों के ऊपर प्रभाव करने के लिए। लेकिन सबसे कठिन सेशन होता था प्रसाद के, दोपहर के प्रसाद के बाद का 3 घंटे का सेशन, दोपहर को 2 से 5, पूरे ऑडिटोरियम के लाइट बंद, और सामने वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक भाषा में प्रस्तुतिकरण कर रहा है, चारों तरफ घनघोर अंधेरा, और आसपास से मुझे किसी के खर्राटे की भी आवाज सुनाई देती थी। तो दोपहर के सेशन के बाद जब मैं बाहर निकला तो राधानाथ महाराज मिले, वो बोले यार ये वैज्ञानिक क्या क्या बातें बोल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपको तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप तो IIT के हो, तब मैं क्या बोलूं, सम्मान रखने के लिए मैंने कहा हाँ मुझे काफी कुछ समझ में आ रहा था महाराज, लेकिन बीच बीच में मुझे नींद आ जाती थी और बीच बीच में मैं सो जाता था। तो महाराज ने कहा आप तो बड़े लकी हो, मैं तो बीच बीच में जागता था। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इतने जटिल भाषा में इस धर्म को समझने की प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इतना सरल मार्ग बता दिया कि भगवान को समझना हो तो भागवत से समझो, और उनके साथ संबंध जोड़ना हो तो महामंत्र के माध्यम से केवल आप अपना संबंध जोड़ लो। तो केवल श्रद्धा के अभाव के कारण कितनी जटिल कपोल कल्पित धारणाओं को अपनाना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं केवल बुद्धि हो तो उससे हम भगवान को नहीं समझ सकते, केवल बुद्धि हो तो कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकते। जब तक बलराम की शक्ति नहीं प्राप्त होगी, वो बलराम जी हमें शक्ति देते हैं कृष्ण के प्रति आस्था और श्रद्धा उत्पन्न करने की। बलराम जी शक्ति देते हैं उस आस्था को क्रियान्वित करके श्री कृष्ण की सेवा करने की। इसलिए हम बलराम जी के सामने याचक बन के आज आए हैं कि आप हमें शक्ति दीजिए, क्योंकि बड़े से बड़ा अगर तलवार भी हो लेकिन तलवार को उठाने की ताकत न हो तो हम युद्ध क्या करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो गीता का ज्ञान भागवत का ज्ञान वो तलवार की तरह है, लेकिन उस तलवार को उठाने की शक्ति और सामर्थ्य चाहिए, वो तलवार को उठाने की शक्ति बलराम देते हैं। तो इसलिए बलराम जी के समक्ष हम आए हैं और इसलिए उनका नाम है बल, वन हु गिव्स वन हु हैज एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ, असीमित मात्रा में जिनकी शक्ति है और जो दो परिवारों को जोड़ते हैं। तो प्राकट्य के तुरंत पश्चात बलराम जी और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए भी ब्रज के विभिन्न गोष्ठ में, कीचड़ में ओतप्रोत होते हुए अपने संपूर्ण दिव्य देह को ब्रज के रज से आभूषित विभूषित करते थे। अब सोचिए, पूर्ण पुरुषोत्तम वैकुंठपति जो कि बहुमूल्य आभूषणों से अपने आप को रत्न जड़ित करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन ब्रज में ब्रज के रज से अपने आप को अभिषिक्त करना पसंद करते हैं, क्योंकि उस ब्रज के रज में उनके भक्तों के चरणों की सेवा लगी हुई है। उनके भक्तों का रज, उनके भक्तों के चरणों का रज उसमें मिश्रित है, इसलिए उससे अपने आप को अभिषिक्त करते हैं। तो कहा गया कि जैसे ही कृष्ण और बलराम थोड़े बड़े होते हैं, कुछ महीने बड़े, ब्रज के रज में जो गोवत्स अपने गोबर और गोमूत्र के माध्यम से और दूध के माध्यम से उस संपूर्ण ब्रजरज को गीला करते हैं, उसका कीचड़ बना देते हैं, उस कीचड़ में ये लौटते हुए चलते हैं। नन्हे से गोवत्सों के पूंछ को पकड़ते हैं, बछड़े के पूंछ को जब पकड़ते हैं तो बछड़ा झटका करके भागता है, भयभीत होकर जब भागने लगता है तो कृष्ण और बलराम को चाहिए कि वो पूंछ को छोड़ दे, लेकिन जैसे वो झटका देते हैं कृष्ण और बलराम उनके पूंछ को और टाइट पकड़ते और वो गोवत्स कृष्ण और बलराम को घसीटते हुए पूरे ब्रज में भ्रमण करते हैं। और सारी गोपियां बगल में खड़े होकर इस सुंदर दृश्य का आनंद लेती है कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले कृष्ण और बलराम जो 33 कोटि देवता अपने रत्न जड़ित सिंहासनों को त्याग कर श्री कृष्ण और बलराम के चरण कमलों में अपने मुकुट मणि रखने के लिए तैयार होते हैं, वो कृष्ण और बलराम कैसे नन्हे से शक्तिहीन गोवत्सों के पूंछ को पकड़कर आंदोलित हो रहे हैं। इस बात को सिद्ध करने कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के हाथों कठपुतली बनने के लिए तैयार हो जाता हूं, ये कृष्ण और बलराम की लीला है। इसलिए बलराम जी का एक नाम क्या है? घसीटा राम, घसीटा राम। और आजकल भी कई लोगों का नाम होता है ऐसे, लेकिन बड़े होने के बाद लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, तो वो भी फिर उसका जो है शॉर्ट फॉर्म कुछ बना देते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ब्रज में अपने भक्तों के हाथ कठपुतली बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर भागवत वर्णन करता है, श्रृंगी अग्नि दमश्री अस्ति जला द्विजकंटकेभ्य। तो कृष्ण और बलराम की दृष्टि पड़ती है किसी सींग वाले जानवर को देखकर, गाय की सींग को देखते हैं, बैल की सींग को देखते हैं, गाय और बैल की सींग को देखकर बड़े आकर्षित हो जाते हैं कि सींग के अग्र भाग में जहां नोकीला भाग है उसको अपन पकड़ते हैं। तो बड़ा सा बैल बैठकर दोपहर के भोजन के बाद अपना चाव चाव करता रहता है, तो कृष्ण और बलराम उसको देखकर आकर्षित होते हैं और सीधा झटका देकर उस सींग में लटकने लगते हैं। अब गाय के सींग को पकड़ोगे तो क्या होगा? तो बैल क्रोध में अपना सर हिलाने लगता है और कृष्ण और बलराम को यहां वहां फेंक देते हैं, और बेचारे यशोदा माई और रोहिणी परेशान हो जाती है, समझाने का प्रयत्न करते, भैया वहां मत जाओ, ये डेंजर है। तो फिर जब सिंह से बचाती हैं तो कृष्ण बलराम की दृष्टि सिगड़ी की ओर जाती है। वो देखती है वो सिगड़ी के अंदर कुछ तो चमक रहा है। क्या चमक रहा है? आग चमक रहा है। तो जलते हुए अंगारों को देखकर कृष्ण और बलराम आकर्षित होकर भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, और यशोदा माई को पकड़ना पड़ता है, और कृष्ण और बलराम को संभालते संभालते उनकी सारी रोटी जल जाती है। और जब घर वाले कंप्लेंट करते कि क्या रोटी बने, बोले क्या करें, ये इतने चंचल है कि हमको कोई भी आइटम बनाने ही नहीं देते। श्रृंगी अग्नि फिर दमश्री, यशोदा माई और रोहिणी कृष्ण बलराम को गणित सिखाने का प्रयत्न करती हैं, एक दो तीन चार। तो कृष्ण और बलराम बोलते हैं ये एक दो तीन चार बड़ा बोरिंग तरीका है। बंदर को पकड़ते हैं और बंदर को पकड़ के एक झापड़ मारते हैं, बंदर मुंह खोलता है, तो कृष्ण बलराम उसके मुंह के अंदर हाथ डालकर गिनने लगते, एक दांत, दो दांत, तीन दांत, चार दांत। और बंदर का तो आपको पता ही है दांत कितना नोकीला है। यहां पर वो गिनती कर रहे हैं और यशोदा और रोहिणी का हृदय धक धक हो रहा है, क्या कर रहे हो नालायक, क्या कर रहे हो, और पकड़कर खींचते हैं उसको। 80, फिर जब सूर्य नारायण की किरणें दीवार पर लटकी हुई तलवार पर पड़ती है, उसका प्रतिबिंब आता है, वो तलवार चमकने लगता है। कृष्ण और बलराम की दृष्टि अब तलवार पे जाती है, किचन के अंदर रखे हुए चाकू पे जाती है। कोई भी चीज नोकीला दिखा, चमकीला दिखा, उनको लगा पकड़ो उसको, फिर उसको पकड़ने भागते हैं। फिर यशोदा और रोहिणी उनके पीछे भाग के पकड़ते हैं उसको। फिर देखते हैं कि भाई हर जगह हमको पकड़ा जा रहा है। सुंदर मटका देखते हैं, मटके के अंदर जल। तो कृष्ण और बलराम सोचते हैं ये गोल गोल है क्या, इसके अंदर है क्या, तो बड़ी जिज्ञासा होती है। तो भागे भागे जाते हैं, ऊपर का ढक्कन हटाते हैं, कुछ दिखता नहीं है। तो फिर थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, फिर भी दिखता नहीं। फिर सर अंदर डालते हैं, सर अंदर डालकर पैर ऊपर, देख रहे हैं अंदर क्या है। इसको देखकर यशोदा और रोहिणी को फिर धक्का लगता है, अरे कहीं डूब गए तो क्या होगा। फिर द्विज अर्थात जो बड़े चोंच वाले और जिनके नाखून बड़े खतरनाक हैं, ऐसे पक्षियों को जाकर उनके साथ दोस्ती करने जाते हैं, कंटकेभ्य, और फिर कंटक से भरे हुए मार्ग पर वो भागने का प्रयत्न करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण और बलराम क्या है, क्रीड़ा परव, क्रीड़ा परायण भगवान है। ब्रज में एक ही कार्य करते हैं, क्रीड़ा, दूसरा कोई धंधा नहीं। तो कृष्ण और बलराम जब तक वृंदावन में थे कभी स्कूल नहीं गए, कभी पढ़ाई नहीं किए। गुरुकुल के बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं सुन के, फिर पता नहीं हमको क्यों सिखाया जा रहा है इतना कुछ। जैसे 5 वर्ष के हुए पकड़ा दिया, गोवत्सों को लेके चलो। तो इसलिए कृष्ण का नाम क्या है, गोपाल। तो इसलिए वृंदावन में 3 बातें प्रधान हैं, एक गाय की सेवा, दूसरा गोविंद भगवान का कीर्तन, और तीसरा गोपीनाथ भगवान के विषय में निरंतर श्रवण। तो ये श्रवण, कीर्तन और सेवा निरंतर ब्रज में विद्यमान, और इसलिए अब वर्णन किया गया कि 5 वर्ष की आयु के बाद कृष्ण और बलराम को गोवत्सों की सेवा दी गई। प्रभुपाद लिखते हैं, नंद महाराज डिड नॉट बिलीव इन एकेडमिक एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन। केवल किताबी ज्ञान नहीं, उनको प्रैक्टिकल ज्ञान देना चाहते थे, और क्योंकि वो वैश्य समाज के थे, उन लोगों का कर्तव्य था गोपालन करना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने विचार किया कि भविष्य की पीढ़ियां पूछेंगी, इस्कॉन के भक्तों से प्रश्न पूछेंगी कि आपके भगवान कृष्ण तो गोपालन करते हैं, आपके भगवान बलराम जी तो कृषि करते हैं, आपके भगवान तो कृषि और गोरक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन इस्कॉन का आदमी तो केवल दूध ही पीता है और भोजन ही करता है, आप में से कोई गोपालन करते हुए या खेती करते हुए दिखते नहीं, सब शहर में ही बैठे हो, क्या चल रहा है? कृषि और गोरक्षा का ठेका केवल भगवान को दे दिया गया कि आप लोग भी करने वाले हो? तो इस प्रकार का प्रश्न उठेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने विचार किया कि भले अपने कई मंदिर होंगे, लेकिन थोड़े मंदिर होने चाहिए जो कृषि क्षेत्र में होंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने न्यू तालवन, गीता नगरी, न्यू वृंदावन इत्यादि स्टार्ट किया, और इसलिए आज हम लोग बलराम जयंती मना रहे हैं गोवर्धन कृषि क्षेत्र में। यहां के प्रधान कृष्ण और बलराम हैं, और यह संपूर्ण वृंदावन की छवि हम लोग गो सेवा और कृषि के आधार पर चला रहे हैं, और इसलिए यहां पर परम पूज्य राधानाथ महाराज ने कई वर्ष पूर्व ये संकल्पना की, ये विचार किया कि लोग यहां जब आए तो ब्रजभूमि वृंदावन का एक झलक यहां पर हम देख सकें। तो इसलिए आज मानव समाज में सबसे बड़ी आवश्यकता है गो माता का सम्मान हो, गो माता की सेवा हो, जो कृष्ण और बलराम स्वयं अपने हाथों से उनकी सेवा कर रहे थे। एक आधुनिक स्कूल में टीचर ने प्रश्न पूछा निबंध में, ऐसे होता ना ऐसे लिखने के लिए एग्जाम में, गाय के ऊपर एक ऐसे लिखो, तो स्टूडेंट बड़ा जो शरारती था उसने लिख दिया, गाय हमारी माता है, मुझको कुछ नहीं आता है। तो टीचर ने देखा, बोला बड़ा शरारती है, टीचर ने लिख दिया, गाय तुम्हारी माता है, मुझको कुछ नहीं आता है, बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो ये गाय और बैल ये वास्तव में समाज के माता और पिता है, और कृष्ण और बलराम दिन भर दिवस भर भ्रमण करते करते इनकी सेवा में लगे रहते थे। राधानाथ महाराज कई बार अपना लेक्चर देते देते वृंदावन में, खासकर जब लेक्चर होता है तो लेक्चर के बीच गाय की आवाज निकालते हैं, गाय किस तरह आवाज निकालती है। तो एक बार मैं कोई गांव में प्रोग्राम करने गया, मुझे लगा कि मैं भी ऐसा करता हूं, लोग पसंद करते हैं ये, और यहां पर दूसरा कोई अपना रेगुलर डिवोटी है नहीं, नया जगह है, मैं अगर कुछ गलती भी किया तो किसी को पता नहीं पड़ेगा। तो मैं भी अपना कृष्ण की गोचारण लीला सुनाते सुनाते गाय कैसे आवाज करती है जैसे महाराज जैसे करते हैं, वैसे प्रयास किए, और मुझे लगा बड़ा अच्छा किया मैंने। लेक्चर के बाद एक व्यक्ति आकर बोलते हैं, वो आपने जो आवाज किया वो कौन सा जानवर था वो? मैंने कहा यार कमाल है, गोचारण लीला सुनाया तो गाय होगा ना। बोलता है वो बिल्कुल गाय की आवाज नहीं लग रही थी। मैंने कहा बंबई की गाय थी भाई वो। वो बेचारा कंफ्यूज होके चला गया। उसके बाद मैंने कहा कि भैया कभी नकल मत करो। अब राधानाथ महाराज ने गायों की सेवा की है व्यक्तिगत रूप से 7-8-10 साल तक, न्यू वृंदावन में रहकर, और इसलिए यहां गोवर्धन इको विलेज में भले किसी का मूड हो ना हो, वो गौशाला डिपार्टमेंट के साथ लगे रहते हैं, ये करो ये करो वो करो ये करो। तो वास्तव में कृष्ण और बलराम साक्षात इसके मूर्तिमान उदाहरण है। अब जब कृष्ण और बलराम जी वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के वो लीलाएं करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, जिसमें वो पक्षियों का नकल करते हैं, पशुओं का नकल करते हैं, पक्षियों की भांति आवाज करते हैं, ध्वनि करते हैं, चिल्लाते हैं। और एक कुआं होता है, उस कुआं के अंदर जोर से चिल्लाते हैं, और जब चिल्लाते हैं तो कुआं की प्रतिध्वनि आती है, एको। जब प्रतिध्वनि आती है तो वो लोग गुस्से में फिर उसे गाली देते हैं। और ये सारी क्रीड़ाएं कर रहे हैं कृष्ण और बलराम जैसे कोई सामान्य बालक हो। और तब वर्णन आता है कि बलराम जी के चरणों को अपने गोद पर रखकर भगवान श्री कृष्ण उनका पाद संवाहन करते हुए बलराम जी के गुणों का स्तुति करते हुए कहते हैं कि कैसे इस ब्रज भूमि के सारे पशु पक्षी जीव जंतु आपको ही सम्मानित कर रहे हैं, हे अग्रज, हे बलराम जी। बलराम जी की चरणों की सेवा करते हुए, उनको संतुष्ट करते हुए, उनको प्रेम प्रकट करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रेम का आदान प्रदान का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण प्रस्तुत करते हैं। तब अब तक जितने असुरों का वध किया था वो कृष्ण ने, अब तालवन में जब प्रकट होते हैं तो वहां पर सारे ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम को कहते हैं, हे कृष्ण, हे बलराम, हम लोग बड़े भूखे हैं, हमको ये बड़े स्वादिष्ट ताल फल चाहिए। अब कृष्ण देखते हैं कि भाई मैंने तो कई असुरों का वध कर दिया, बलराम जी ने अभी तक अकाउंट नहीं खोला, तो कृष्ण निश्चय करते हैं कि चलो ये असुर का वध बलराम जी करेंगे। तो कृष्ण बलराम जी को कहते हैं कि भाई सब भूखे हैं तो सारे फल तोड़िए। तो बलराम जी जाकर ताल वृक्षों को हिलाने लगते हैं, और जैसे ही ताल वृक्ष को हिलाते बड़े बड़े ताल के फल नीचे गिरते हैं। जैसे ही ताल के फल नीचे गिरते हैं, धेनुकासुर जो कि उस संपूर्ण तालवन के मालिक थे, रक्षक थे, उनको ये ध्वनि सुनाई पड़ती है। आक्रोश और आवेश में आकर भागे भागे आते हैं और देखते हैं कि बलराम जी अपने हाथों से इन वृक्षों को हिलाकर आंदोलित करके उन फलों को नीचे गिरा रहे हैं। बड़े क्रोधावेश में आकर पीछे मुड़कर अपने पिछले दो पैरों से और दो पैरों के खुर से बलराम जी के वक्ष स्थल पर आक्रमण करते हैं। बड़ा क्रोध में आते हैं। तो दो असुरों ने बलराम जी पर इस प्रकार आक्रमण किया, एक थे धेनुका और दूसरे एक हुए केशी। क्योंकि केशी ने सुना था, कंस ने कहा केशी को जाकर कृष्ण का वध करके आओ, तो उसके कुछ दिन पहले की बात थी कि बलराम जी के मन में कुछ जिज्ञासा हुई। बलराम जी कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण, तुम हमेशा वेणुवादन करते हो, बांसुरी बजाते हो, और आपकी बांसुरी की ध्वनि को सुन के सारी गोपियां आ जाती हैं, सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं, मैं अपने हाथ में हल लेके घूमता रहता हूं, मैं भी थोड़ा बांसुरी बजाना चाहता हूं। तो कृष्ण कह रहे, भैया पहले पूछ लेते, ले लो। तुरंत बलराम जी के हाथ में बांसुरी दे दी। अब बलराम जी बांसुरी लेकर उसका फिर अपना आरएनडी करने लगे, किस तरह बजेगा। पेड़ के नीचे बैठकर बलराम जी उसको बजाने का प्रयास कर रहे हैं। तभी केशी मथुरा से निकलने वाला है, कंस को जाके पूछता है कि भाई कृष्ण का वध करना है, कुछ लास्ट इंफॉर्मेशन देना चाहते हो क्या कि कैसा दिखता है, क्या करता है वगैरह वगैरह, जिससे कि मैं तुरंत जाकर जो है गाइडेड मिसाइल की तरह जाकर उसको मार के आ जाऊं? कंस ने कहा पूरे वृंदावन में एक ही व्यक्ति बांसुरी बजाता है, जिसके हाथ में बांसुरी हो मार के आ जाओ। केशी निकले, केवल मन में एक ही था, बांसुरी बांसुरी बांसुरी। भागते हुए गए, देखा बलराम जी को, बलराम जी बड़े प्रेम से बजाने का प्रयास कर रहे हैं, देखा भी नहीं कि केशी आ गया और बांसुरी बजा रहे थे। केशी ने आकर ऐसा भयंकर आक्रमण किया उनके ऊपर, वक्षस्थल पर दो पैर मारा, बलराम जी दूर जाकर गिरे। बलराम जी ने पूछा क्यों मारा? उसने कहा रे बांसुरी वाले तुम हो। तो उस दिन के बाद बलराम जी ने व्रत लिया, ये बांसुरी कृष्ण ही बजाए, अपने लिए हल ही ठीक है। तो यहां पर धेनुका ने जब आक्रमण किया तो बलराम जी को लगा कि किसी ने खुजली की है, इतना जोर से आक्रमण किया था। फिर दूसरी बार आक्रमण किया, फिर बलराम जी ने उनके पैरों को पकड़ा, उन पैरों को पकड़कर अपने सर के ऊपर यू यू घुमाकर सबसे ऊंचे वाले ताल वृक्ष के ऊपर पटक दिया और इतनी जोर से घुमाया कि धेनुका का जान उसी समय समाप्त हो गया और फिर सीधा सबसे विशाल वृक्ष के ऊपर जाकर गिरा। वो वृक्ष छोटे वाले वृक्ष पे गिरा, वो छोटे वाले वृक्ष पे गिरा, देखते ही देखते सारे वृक्ष धाराशायी हो गए। धेनुका को अपने सामने मरते हुए धेनुका के सारे दूसरे असुर मित्रों ने देखा, लेकिन उनको इतनी भी अक्ल नहीं आई कि हमारी भी यही दुर्गति होगी, इसलिए कहते हैं उनको गधा। अगर देखकर समझ जाए तो गधा थोड़ी कहेगा। देखा कि उनके सामने कैसे कृष्ण और बलराम धेनुका का वध किए, लेकिन फिर भी पूर्ण उत्साह और आत्मविश्वास के साथ सब लोग धमक गए कृष्ण और बलराम पर आक्रमण करने। और कृष्ण और बलराम अंदर ही अंदर हंस रहे थे, क्या गधे हैं ये। एक के बाद एक आए, उनको पकड़ा और उनका वध किया। देखते ही देखते सारे जितने ताल वृक्ष थे, सब ताल वृक्षों के ऊपर मरे हुए गधों का मृत शव पड़ा हुआ था। तो भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, धेनुकासुर किसके प्रतीक हैं? तो कहते हैं धेनुकासुर रिप्रेजेंट्स ग्रॉस मटेरियल इंटेलिजेंस, स्थूल भौतिक बुद्धि। और क्या बुद्धि? मैं और मेरा, मैं और मेरा, इसको लेकर जो भाव उत्पन्न होता है। और दूसरा कि वो धेनुका वहां पर स्वयं कोई भी ताल फलों का आस्वादन नहीं कर रहे थे और न दूसरों को आस्वादन करने दे रहे थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते वो ऐसे शास्त्रों के तथा कथित पंडित हैं जो खुद शास्त्र को नहीं समझते और दूसरों को भी गलत रास्ते पर समझाते हैं। तो इसलिए आचार्य अर्थात वो जो स्वयं पालन करे और दूसरों को सही मार्ग पर पथ प्रशस्त करे। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर थे वेनिस बीच लॉस एंजलस में, उनके सर्वेंट नंद कुमार दास पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक नंद कुमार दास के पीछे एक बड़ा सा कुत्ता लग गया, और अमेरिका के कुत्ते भी काफी बड़े बड़े होते हैं, घोड़े की तरह दिखते हैं। वो इतना जोर जोर से भागने लगा उसके पीछे, नंद कुमार दास घबरा गया, भागने लगे प्रभुपाद के पास चिल्लाते हुए, प्रभुपाद बचाओ बचाओ बचाओ। प्रभुपाद मुड़ के देखे, बड़ा अद्भुत दृश्य, धोती उड़ रहा है और शिखा उड़ रही है और चिल्लाते हुए भाग रहा है नंद कुमार दास और पीछे कुत्ता आ रहा है, और सब भक्त लोग घबरा कर देखने लगे अब क्या होगा। प्रभुपाद जी एक क्षण के लिए परिस्थिति को देखे, थोड़ा झुके, हाथ के ऊपर डंडा लिया, सर के ऊपर डंडा उठाया, वॉकिंग स्टिक, डंडा उठाकर आंखों से आंख मिलाए कुत्ते के साथ और जोर से चिल्लाया हट। अब अमरीकी कुत्ते ने कभी देसी गाली सुनी नहीं थी, वो हट सुनकर कुत्ता इतना घबरा गया दुम दबा के वहीं बैठ गया। और भक्त लोग बड़े इंप्रेस हो गए कि प्रभुपाद कुत्ते को भी कंट्रोल कर लेते। 3 साल बाद वही नंद कुमार दास जयपुर में रोटी बना रहे थे, खिड़की खुला हुआ था, अचानक बंदर अंदर आ गया। बंदर को देखकर नंद कुमार दास रोटी का बेलन उठाए और देख के उस बंदर को बोले हट। बंदर बड़ा सा बर्तन लेके मारा, वो भागे भागे प्रभुपाद के पास आए, बोले मैंने तो वही फॉलो किया जो मैंने देखा था, लेकिन फेल हो गया। प्रभुपाद ने कहा तुम देखे लेकिन समझे नहीं। तो कई बार बाहर से देखकर लगेगा भक्ति कितना आसान है, ये भक्त कितनी आसानी से कर रहे हैं। ओहो, कई बार मैंने लोगों को कहा है क्या क्या करना है, 16 माला करना है, 16 करना है, 16 बस 16। मैंने कहा बस थोड़ा साल करके दिखाओ फिर बोलो बस। थोड़े साल के बाद बोलोगे अरे कहाँ, नियरेस्ट बस कहाँ है, पकड़ के जाता हूं बाहर। तो इसलिए यहां पर ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि देखिए भावग्राही बनना है, जो भक्ति का भाव है उसको पकड़ना है अपने जीवन में, और भक्ति के भाव को ना पकड़े तो केवल हम भारवाही बनेंगे। तो फिर दूसरा जो असुर जिसका वध किया बलराम जी ने, उनका नाम है प्रलंबासुर। तो गेम खेल रहे थे, कृष्ण का एक टीम, बलराम जी का टीम, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं। अब कंस का ये असुर प्रलंब असुर के रूप में आ गया, लेकिन कौन सा रूप धारण किया, ग्वाल बाल का ही रूप धारण करके आ गया, छल कपट के साथ। कृष्ण तो देख के समझ गए ये तो असुर है, लेकिन कृष्ण ने कहा बलराम जी के कोटा में छोड़ देते हैं। तो फिर ये था कि जो हारेगा, वो जो जीत गया उसको अपने ऊपर उठा के भागेगा। तो बलराम जी का टीम हार गया, तो बलराम जी बेचारे जो प्रलंबासुर जो है, प्रलंबासुर को उठाए, प्रलंबासुर उठा के बलराम जी को अपने ऊपर रख लिए। अब बलराम जी सोच रहे थे कि अब हमें जाना तो एक दिशा में है, लेकिन ये प्रलंबासुर मुझे लेके कौन सी दिशा में जा रहा है जंगल के अंदर। कुछ समय के पश्चात बलराम जी समझ गए कि ये तो शायद कोई असुर ही है। तो अचानक बलराम जी अपना वजन बढ़ाने लगे। अब अचानक जब वजन बढ़ गया तो ये प्रलंबासुर जो ग्वाल बाल का रूप धारण करके भाग रहा था, अब वो ग्वाल बाल का रूप धारण नहीं कर पाया, उसकी असलियत बाहर आ गई और वो अपना असुर रूप बाहर निकाला। उस असुर रूप को देखकर कुछ क्षणों के लिए बलराम जी घबरा गए। अब आचार्य बोलते बलराम जी क्यों घबरा गए, क्योंकि सबसे पहले बलराम जी को लगा कि अगर ये असुर यहां पर है तो कहीं कृष्ण के साथ भी कोई असुर तो नहीं है जो कृष्ण को आक्रमण करेगा। बलराम जी को इस बात का भय था कि अरे कृष्ण ने तो अपना मित्र के रूप में इसको स्वीकार किया, मुझे मारने का अधिकार है कि नहीं, मैं मारूं और फिर बाद में कृष्ण बोले अरे मेरा मित्र था क्यों मार दिया, कहीं कॉन्ट्रोवर्सी ना हो जाए। तो इसलिए बलराम जी थोड़े क्षणों के लिए कंफ्यूज हो गए, लेकिन उसके पश्चात श्री कृष्ण ने उनके अंदर प्रेरणा दी और बलराम जी ने कहा चलो भाई बहुत हो गया, इसको यहीं समाप्त करते। बलराम जी ने अपना मुट्ठी लिया और सीधा उसके सर पर दे मारा और अगले ही क्षण वो समाप्त हो गया। तो कहते हैं बलराम जी जो वध किए प्रलंबा का, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं प्रलंबासुर किसके प्रतीक हैं, प्रलंबासुर 5 बातों के प्रतीक हैं। प्रलंबासुर काम के प्रतीक हैं, लोभ के प्रतीक हैं, भोग के प्रतीक हैं, प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं और हर प्रकार के इस भौतिक जगत के इस संसार को पूरी तरह आसक्त होकर बारंबार पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले तत्व के प्रतीक हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अगर इन बातों से मुक्त होना हो तो हम अपने प्रयासों से मुक्त नहीं हो सकते। आंतरिकरण करना होगा, परिश्रम करना होगा, नम्रता और विनय के साथ सद्गुरु की सेवा करनी होगी। जब हम सद्गुरु की सेवा करेंगे तब भगवान प्रसन्न होकर उस गुरु के माध्यम से हमें प्रेरणा देंगे और तब जाके शुद्धिकरण हो पाएगा। तो इस प्रकार ये दो असुर, धेनुकासुर और प्रलंबासुर, ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं ये दोनों ऐसे अनर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हम अपने प्रयासों से मुक्त नहीं हो सकते और कृष्ण भी साक्षात हस्ताक्षेप नहीं करते, वो बलराम जी के माध्यम से हमें मुक्त करते हैं, शुद्ध करते हैं और वो बलराम जी गुरु के माध्यम से और गुरु की सेवा के माध्यम से हमारे शुद्धिकरण के ये प्रमुख कारण बनते हैं। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बलराम जयंती महोत्सव मनाने और इस बलराम जयंती महोत्सव के अंतर्गत हम लोग बलराम जी के सामने याचक बन के आए हैं कि हे बलराम जी, हम अनर्थों से अभिभूत हैं लेकिन हम अनर्थों से मुक्त होना चाहते हैं और अनर्थों से मुक्त होने के लिए हम केवल आपके कृपा की याचना करते हैं। आपकी कृपा प्राप्त तब होगी जब सद्गुरु हमें आश्रय देंगे, श्री गुरु के आश्रय से, उनकी सेवा से, उनकी प्रसन्नता से। और श्री गुरु कब प्रसन्न होंगे? नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को पानीहाटी में सभी वैष्णवों की सेवा में लगाया। जब हम वैष्णव सेवा में सम्मिलित होंगे तब उस वैष्णव सेवा के माध्यम से गुरु प्रसन्न होते हैं और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तब बलराम जी प्रसन्न होते हैं और तब जाकर धीरे धीरे अनर्थ छूटने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो हम आभारी हैं कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के, जो बलराम जी के प्रतिनिधि बनकर पूरे विश्व में भ्रमण किए, ऐसे ऐसे स्थानों में कृष्ण कीर्तन को स्थापित किया जहां लोगों ने अपने जीवन में कभी हरिनाम सुना नहीं था, कृष्ण क्या है, बलराम क्या है जानते नहीं। प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे स्थानों में कृष्ण बलराम जी के विग्रह स्थापित किए, राधा कृष्ण की लीला क्रीड़ा स्थापना की, उनके विग्रह स्थापित किए और वहां पर हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन किया। एक मंदिर में हरिनाम संकीर्तन से आकर्षित होकर एक व्यक्ति ज्वाइन हो गया, फिर वो भक्तों के साथ कीर्तन में जाता था। भक्त लोग हरे कृष्णा कीर्तन गाते थे, उसको समझ में आता था, लेकिन वो जो कीर्तन गाने वाला था वो एक और मंत्र गाता था, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल। अब वो गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल जब बोलता था तो ये नया आदमी अमेरिकन, उसको समझ में नहीं आता था ये बोल क्या रहा है, ये हरे कृष्णा तो ठीक है, ये नया मंत्र क्या है। तो उसको क्या सुनाई देता था, वेयर डिड नित्यानंद गो, ऐसा उसको लगता था ये बोल रहे, वेयर डिड नित्यानंद गो, नित्यानंद कहां गए। और फिर सामने से भक्त लोग वॉम्पर लेके हरि बोल बोलते थे तो उसको लगता था क्या बोल रहे, आई डोंट नो तो बोला यार ये क्या चल रहा है, वेयर डिड नित्यानंद गो, आई डोंट नो, ये क्या हो क्या रहा है, हर रोज यहां पर कीर्तन हो रहा है और हर रोज ये प्रश्न पूछा जा रहा है, नित्यानंद गायब कहां हो गए। तो एक दिन प्रसाद हॉल में वो बैठे थे, बगल में एक डिवोटी था, दूसरा कोई नहीं था, उसको लगा अच्छा आइडिया है आज पूछता हूं इसको। तो प्रसाद खाते खाते उसने बगल वाले भक्त को कहा कि एक प्रश्न है मेरा, बोला हाँ पूछो, बोला वेयर डिड नित्यानंद गो, नित्यानंद कहाँ गए, बोले आई डोंट नो। बोले यार ये क्या हो गया। तो कई दिनों बाद उनको मालूम पड़ा कि ये एक अलग मंत्र है जो ये लोग गा रहे हैं, लेकिन समझे न समझे केवल वैष्णव समुदाय में रहकर कीर्तन करते रहो, कथा सुनते रहो और सेवा करते रहो तो अपने आप परिवर्तन सिद्ध होता है। और ये परिवर्तन केवल बलराम जी अपनी शक्ति से सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बलराम जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी असीम अनुकंपा, असीम कृपा हम पर बनाए रखें, जिससे कि हम अपने भक्ति के मार्ग में हर प्रकार के आध्यात्मिक शक्ति को संचित कर सकें और इस आध्यात्मिक शक्ति के बलबूते पर हम वास्तव में भगवत धाम की ओर अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकें, श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की शक्ति हम अपने जीवन में उतार सकें और हम अपने मानव जीवन को सफल बना सकें। कृष्ण बलराम भगवान की, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी की, श्री श्री राधा मदन मोहन देव भगवान की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की, इताई गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी हम लोग आरती में कुछ अनाउंसमेंट कर दीजिए, हारमोनियम देना।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, और हमारा बीच में बहुत सुंदर कथा हुआ। अभी इस प्रकार का प्रोग्राम रहेंगे, अभी भगवान जी का आरती होगा, भगवान ऑलरेडी महाप्रसाद का सर्विंग चालू हो चुके हैं, आप आरती के बाद आप महाप्रसाद में भाग ले सकते हैं। ये प्रसादम सर्विंग इधर ललिता भवन में हो रहे हैं, आप नीचे उतर के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ललिता भवन में पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो हमारे फेस्टिवल सीजन में अभी बलराम जयंती से लेकर अभी जन्माष्टमी और इस पूरे दौरान हम लोग लाखों लोगों को पूरे आसपास के गांवों में प्रसाद वितरण करके हंगर फ्री पालघर के अंतर्गत जो अभियान चला रहे हैं, तो मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ मिस्टर हरिहरन और हरनीत जी हरिहरन का, जिन्होंने ये अन्न क्षेत्र में स्पॉन्सरशिप किया है। हरि बोल। और शैलेश और जलपा लुखी जो कि बॉम्बे के हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हरि बोल। और नित्यानंद चरण प्रभु जो कि बॉम्बे से आए हैं अपने ग्रुप के साथ और हमेशा से गोवर्धन अन्न क्षेत्र और इन गतिविधियों के सपोर्ट में कई सेवाएं किए हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरि बोल। तो आशा है आने वाले दिनों में जो जन्माष्टमी महोत्सव हम लोग 3 दिवसीय महोत्सव मना रहे हैं उसमें आप सभी लोग भारी संख्या में भाग लेंगे और आपके संबंध में जितने लोग हों उनको आप अवश्य निमंत्रण दें और उन्हें हमारे इस फेस्टिवल से जोड़ दें। और परम पूज्य कविचंद्र स्वामी महाराज और श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज जो कि आए हुए हैं गोवर्धन इको विलेज में, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। तो आइए सभी लोग उठिए और कीर्तन में भाग लेंगे।